भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। 29 जनवरी 1940 को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा, यदि आप इधर आए तो अपनी लिखी एक छोटी सी पुस्तिका दिखाऊंगा। पुस्तक का नाम होगा भारतीय साहित्य की प्राणधारा या ऐसा ही कुछ। यह वही पुस्तक है जो अगले महीने फरवरी में हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से प्रकाशित हुई। नाम वह नहीं रहा पर तथ्य वही है। भारतीय साहित्य की प्राणधारा प्रमाण है भूमिका के आरंभिक दो अध्याय, जिनका शीर्षक है भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास और जो भूमिका की आधारशिला है। भूमिका का आरंभ इस घोषणा से होता है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम धर्म आया नहीं होता तो भी इस हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस नाटकीय घोषणा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बहुत से विद्वान हिंदी साहित्य के उदय को मुसलमानों और हिंदुओं के संघर्ष का परिणाम मानते हैं। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल माना, क्योंकि उस समय मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू राजाओं के वीरतापूर्ण युद्ध की गाथाएं लिखी गईं। फिर भक्ति काल आया, क्योंकि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। पहले तो द्विवेदी जी ने इस बात का प्रतिवाद किया कि हिंदी साहित्य हत दर्प पराजित जाति की संपत्ति है। फिर उन्होंने भक्ति काव्य को मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया समझाने वाली धारणा का खंडन करते हुए कहा कि सूरदास और तुलसीदास आदि वैष्णव कवियों की समुची कविता में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का भाव नहीं है। जिस समाज को ये भक्तगण सुधारना चाहते थे उनमें विदेशी धर्म का कोई प्रभाव उन्होंने लक्ष्य नहीं किया था। पृष्ठ संख्या 28। किंतु आगे किसी भ्रम के लिए गुंजाइश न छोड़ते हुए उन्होंने यह भी जोर दिया कि इन सब का यह अर्थ नहीं कि मुसलमानी धर्म का कोई प्रभाव साहित्य पर नहीं पड़ा है, किंतु यह प्रभाव प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। पृष्ठ संख्या 29। इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि प्रतिवाद के लक्ष्य के रूप में द्विवेदी जी ने शुक्ल जी को नहीं बल्कि अंग्रेज इतिहासकार हेवेल को चुना है। भूमिका में उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर हेवेल ने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसलिए दुनिया के झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धर्म की ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यह गलत व्याख्या है। पृष्ठ संख्या 15। यद्यपि द्विवेदी जी ने यहाँ हेवेल के मत की समीक्षा नहीं की है, किंतु ऐसा संकेत प्रतीत होता है कि भक्त आंदोलन को मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की प्रतिक्रिया बताने की जिम्मेदारी मूलतः साम्राज्यवादी अंग्रेज इतिहासकारों पर है। इसलिए यदि कोई भारतीय इतिहासकार उसी बात को दोहराता है तो वह अनजाने ही अंग्रेज साम्राज्यवाद द्वारा प्रचारित भ्रम का शिकार है, और इस प्रकार वह अंततः उस साम्राज्यवादी हित का ही समर्थन करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह इतिहास की संप्रदायवादी दृष्टि है जिसका भरपूर इस्तेमाल अंग्रेज साम्राज्यवाद ने देश की हिंदू मुसलमान साधारण जनता को विभाजित करने के लिए किया, और इस कार्य में उन्हें देशी सामंतों और उनके सहायक पुरोहितों और मौलवियों से मदद मिली। निसंदेह इस साम्प्रदायवादी इतिहास दृष्टि के विरोध का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को है, जिन्होंने हिंदी में पहले पहल साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए एक भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य की भूमिका इस दृष्टि से ऐतिहासिक दस्तावेज है। वैसे आज भी द्विवेदी जी का मत विवाद से परे नहीं है। उदाहरण के लिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आलोचना के द्विवेदी स्मृति अंक नवांक 49-50 अप्रैल सितंबर 1979 में शुक्ल द्विवेदी विवाद को फिर से उठाते हुए लिखा है, पर एक बात की ओर ध्यान दिलाए बिना यह प्रसंग अधूरा रह जाएगा। सूरदास पर कार्य करते समय विद्वानों ने प्रायः वल्लभाचार्य की इन पंक्तियों को उद्धृत किया है, देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। भक्त कवियों के एक प्रमुख गुरु के सीधे साक्ष्य पर जो प्रतिक्रिया वाली व्याख्या पुष्ट होती है। पृष्ठ संख्या 57। दरअसल वल्लभाचार्य के जिस उद्धरण के बल पर भक्ति को मुसलमानों की प्रतिक्रिया मानने वाली साधारणा को पुष्ट किया गया है, उससे आचार्य शुक्ल अनभिज्ञ न थे। हिंदी साहित्य का इतिहास में तथा सूरदास नाम की पुस्तक के वल्लभाचार्य शीर्षक परिच्छेद में आचार्य शुक्ल ने ही यह लिखा है, कृष्णाश्रय नामक अपने एक प्रकरण ग्रंथ में आचार्य जी ने देश काल की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें वेद मार्ग का या मर्यादा मार्ग का अनुसरण उन्होंने अत्यंत कठिन या असंभव दिखाई पड़ता। वल्लभाचार्य जी के समय में देश के मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखलाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कृति का प्रभाव अच्छी तरह जम रहा था। सूफी भक्तों या पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की भक्ति का प्रचार कार्य चल रहा था। इस परिस्थिति में भागवत की प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा ही लोगों के कल्याण मार्ग की ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के बने रहने की संभावना आचार्य जी को दिखलाई पड़ी। सूरदास प्रथम संस्करण 2000 पृष्ठ संख्या 117। वल्लभाचार्य कृत कृष्णाश्रय के जिन श्लोकों के आधार पर उपयुक्त स्थापना की गई है वे इस प्रकार हैं: मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे निलेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर् मम गंगादि तीर्थ वरेषु दुष्टेर् वावृत्ते शिवः तिरोहिताधि देवेषु कृष्ण एव गतिर् मम अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेष्व व्रत योगीषु तिरोहाति तिरोहा तार्थ वेदेषु कृष्ण एव गति गतिर्मम नानावाद विनष्टेषु सर्व कर्म व्रतादिषु पाशेन्द्र प्रत्येषु कृष्ण एव गतिर्मम। यह सही है कि स्त्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के मलेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है, और यदि मलेच्छ को मुसलमानों का वाचक मान भी लिया जाए तो उससे यह कहां सिद्ध होता है कि गंगा आदि तीर्थों के भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ के तिरोहित होने, व्रत आदि सभी कर्मों के नष्ट होने, पाषंड पाप अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये मलेच्छ ही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के आक्रमण के कारण कृष्ण का आश्रय ढूंढा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शुक्ल जी ने कृष्णाश्रय के संदर्भ में जहां देश काल की विपरीत दशा का वर्णन किया है, वहां मुसलमानों को उनका कारण नहीं बताया है। मुसलमानों का उल्लेख उनकी अपनी टिप्पणियों में है, जहां बहमनी सुल्तानों के साथ साथ सूफी भक्त और पीर भी घसीट लिए गए हैं, जैसा कि द्विवेदी जी ने अन्यत्र कहा है। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्त की भावधारा को उमड़ना था तो पहले से सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण में। हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास, संस्करण 1969, पृष्ठ संख्या 55। इसी क्रम में यह भी पूछा जा सकता है कि यदि भगवत भक्ति के लिए आक्रांत मुसलमान ही जिम्मेदार थे तो स्वयं मुसलमान भक्त कृष्ण की शरण में क्यों आए, और जो मुसलमान कृष्ण की शरण में नहीं आए वे निर्गुण भगवान और सूफी मार्ग की ही ओर क्यों गए। इसमें तो कोई शक नहीं कि भगवान की शरण ढूंढने के लिए साधारण जनों के बीच से उठने वाले भक्त किसी न किसी बड़े कष्ट के कारण ही गए, किंतु इस कष्ट के लिए सिर्फ मुसलमान आक्रमणकारियों और शासकों को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं है। आचार्य शुक्ल के प्रति आदर भाव डॉक्टर राम विलास शर्मा को डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी से कम नहीं बल्कि कुछ अधिक ही है, और तुलना के लिए द्विवेदी जी सामने हो तो और भी अधिक है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 नामक पुस्तक में उन्होंने इस विषय में शुक्ल जी की धारणा को गलत माना है। लिखा है, शुक्ल जी का विचार था कि यह निराशा और उदासी मुस्लिम शासन के कारण थी। देश में विदेशी जातियों का आक्रमण और उनका शासन भी एक कारण था, लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्ता में सहायक और भाग लेने वाले देशी शुक्ल जी की देसी सामंत भी थे, उन सामंतों के देसी सहायक पंडे और पुरोहित भी थे। स्वयं शुक्ल जी ने दरबारी कवियों को जो चुन चुन कर सुनाई है उससे स्पष्ट है कि उनकी सहानुभूति देश रक्षा के एक इन ठेकेदारों के साथ न थी। फिर भी उनके विवेचन में देसी सामंतों की भूमिका हर जगह स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने निराशा का कारण मुस्लिम शासन बताया है। पृष्ठ संख्या 84-85, जोर मेरा। और इससे परिणाम यह निकलता है कि जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आंदोलनों के सामाजिक आधार का सही सही पता नहीं लगा सकते। पृष्ठ संख्या 86। इस प्रकार अंततः द्विवेदी जी के मत के औचित्य की पुष्टि होती है। दरअसल भारत पर तुर्कों और मुगलों के आक्रमण का तथा शासन से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, जिसे द्विवेदी जी ने तो नहीं उठाया है, लेकिन डॉक्टर राम विलास शर्मा ने उठाया है और प्रसंगवश उसकी चर्चा आवश्यक है। प्रश्न यह है कि क्या तुर्कों और मुगलों के आक्रमण तथा शासन के कारण भारतीय समाज में कोई ऐसा उल्लेखनीय परिवर्तन आया जिससे यहाँ का साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन भी प्रभावित हुआ? डॉक्टर राम विलास शर्मा ऐसे किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदी विद्यापीठ आगरा की भारतीय साहित्य पत्रिका वर्ष 19 अंक 3-4 जुलाई अक्टूबर 1974 में प्रकाशित भारतीय साहित्य का इतिहास, साहित्य में देशी भाषाओं की प्रतिष्ठा शीर्षक लेख में तुर्कों के हमले पर हिंदुत्व प्रेमी इतिहासकारों की विडम्बनापूर्ण स्थिति पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, इतिहास लेखक तुर्क आक्रमण काल को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की विभाजक रेखा मानते हैं। ये सब बड़े हिंदुत्व प्रेमी इतिहासकार हैं। इनसे पूछना चाहिए, यदि तुर्क आक्रमणकारियों की भूमिका क्रांतिकारी नहीं थी तो एक युग समाप्त कैसे हो गया, दूसरे युग का सूत्रपात कैसे हुआ, प्राचीन भारत का अवसान और मध्यकालीन भारत का अभ्युदय, इससे अधिक युग परिवर्तन का स्पष्ट रूप और क्या होगा। तुर्कों की धर्मांधता और क्रूरता को निरंतर कोसने वाले ये इतिहासकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें युग प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। जहाँ तक आधुनिक आर्य भाषाओं के अभ्युदय का प्रश्न है, साहित्य में उनके प्रतिष्ठित होने का प्रश्न है, वहाँ यह स्वीकृति बहुत अप्रत्यक्ष भी नहीं है। डॉक्टर सुनीत कुमार चाटुर्जिया ने लिखा है, यदि तुर्क मुसलमान विजय न हुई होती तो यह संभव था कि आधुनिक भारतीय आर्य लोक भाषाओं का औपचारिक रूप से उद्भव तो हो ही जाता, किंतु लगता है कि गंभीर साहित्यिक उद्देश्यों के लिए उनकी स्वीकृति में विलंब होता। इंडो आर्यन एंड हिंदी, कलकत्ता 1960, पृष्ठ संख्या 103। इसके बाद भारतीय समाज पर तुर्कों के प्रभाव के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जहाँ तक तुर्कों का संबंध है, ये कबीलों के रूप में संगठित थे और सामंती व्यवस्था के प्रारंभिक मंजिलों से गुजर रहे थे। भारत में आकर उन्होंने सामंती व्यवस्था के बदले गढ़ व्यवस्था कायम की हो, ऐसा नहीं हुआ। सामंतवाद के बदले यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था कायम की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कौन सा युग परिवर्तन किया, वे यहाँ के सामाजिक ढांचे में खप गए। डॉक्टर शर्मा का यह कहना सही है कि तुर्कों ने भारत में आकर कोई युग परिवर्तन नहीं किया, न उन्होंने सामंतवाद को तोड़कर गढ़ व्यवस्था कायम की, न पूंजीवादी व्यवस्था। फिर भी प्रश्न यह है कि युग परिवर्तन न सही है, कोई और परिवर्तन उनके आने के साथ हुआ या नहीं, मसलन तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। डॉक्टर शर्मा का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन वे इतिहासकार जो हिंदुत्व प्रेमी नहीं है, इस समस्या पर निरंतर शोध कर रहे हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब ने 13वीं और 14वीं सदी के संदर्भ में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और समाज शीर्षक शोध निबंध में ठोस तथ्यों के आधार पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि तुर्कों के शासन के संबंध समय भारत में वस्त्र उद्योग, सिंचाई, कागज, चुंबकीय कुतुबनुमा, समय सूचक उपकरण तथा घुड़सवार सेना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ। इन तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करते हुए निष्कर्ष स्वरूप प्रोफेसर हबीब ने लिखा है, 13वीं 14वीं सदी के ये प्रौद्योगिकीय परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने शिल्प और कृषि उत्पादन को बढ़ाया, व्यापारिक गतिविधि को तीव्र किया, इससे वर्ग संबंधों में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। नई तकनीक में कुशल दक्ष कारीगर प्राप्त करने की ललक ने व्यक्तिगत नौकरी लागू करने को प्रोत्साहित किया होगा। कागज के प्रचलन से अखिल भारतीय बाजार के विकास में मदद मिली होगी इत्यादि। मध्यकालीन भारत, मैकमिलन 1981। यदि प्रोफेसर हबीब के शोध निष्कर्ष से सही है तो स्पष्ट है कि 13वीं 14वीं सदी में तुर्कों के कारण भारतीय समाज के सामंती ढांचे के अंदर व्यापारी पूंजीवाद के विकास की दिशा में अवश्य ही कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए होंगे, जो देर सबेर सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हुए सांस्कृतिक साहित्यिक परिवर्तन के लिए भी पृष्ठभूमि तैयार कर सके होंगे। इन तकनीकी परिवर्तनों की गैर जानकारी के बावजूद, जैसा कि द्विवेदी जी ने कबीर नामक पुस्तक में दिखलाया है, चुलाहे जैसे अनेक दस्तकारों और कारीगरों ने उस बीच सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन किया था, इसलिए भारतीय समाज पर तुर्कों और उनके बाद मुगलों के प्रभाव को एकदम नकारना सही नहीं है। इस संदर्भ में यह न भूलाना चाहिए कि हिंदुत्व प्रेम तुर्कों को युग प्रवर्तक मानने में ही प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि उसका एक रूप तुर्कों के प्रभाव का एक दम नकार भी है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी की 12 आने वाली बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस्लाम के प्रभाव को पूरा का पूरा नहीं नकारा, सिर्फ इतना ही कहा कि 3/4 समाज वही रहता, इसलिए देखना चाहिए कि वह बचा हुआ 4 आना अथवा 1/4 क्या है, जो इस्लाम के आने का परिणाम है। भारत में आने वाले तुर्कों के बारे में इतना ही कहना काफी नहीं है कि ये कबीलों के रूप में संगठित थे और सामंती व्यवस्था के प्रारंभिक मंजिलों से गुजर रहे थे। उनके पास एक व्यवस्थित विचारधारा भी थी और वे अपने राजनीतिक प्रभुत्व के साथ उस विचारधारा के प्रभुत्व की स्थापना के लिए भी प्रयत्नशील थे। भारतीय समाज पर इस विचारधारात्मक अथवा सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापन का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा भी जरूरी है। तुर्कों के आक्रमण के इस सांस्कृतिक पक्ष पर द्विवेदी जी ने सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि अनेक पुस्तकों में विचार किया है और बहुत थोड़े बहुत अंतर के साथ सब में एक सी बातें ही कही है, किंतु सबसे सुलझा हुआ रूप कबीर के अंतर्गत भारतीय धर्म साधना में कबीर का स्थान शीर्षक अध्याय में मिलता है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस्लाम के आने के पहले इस विशाल जन समूह का कोई एक नाम तक न था, अब उसका नाम हिंदू पड़ा। हिंदू अर्थात भारतीय अर्थात गैर इस्लामी मत। स्पष्ट ही गैर इस्लामी मत में कई तरह के मत थे, परंतु इस विशाल जन समूह को धर्म के स्तर पर संघबद्ध करने के लिए स्तूपीभूत शास्त्र वाक्यों की छानबीन से एक बहुत कुछ मिलता जुलता आचार प्रमाण धर्म मत स्थिर किया गया। इस प्रकार हिंदू को और भी अधिक हिंदू बना दिया गया। इस हिंदू समाज की वर्जनशीलता के कारण वैरागियों, आश्रम भ्रष्ट गृहस्थों आदि की जनसंख्या बढ़ने लगी। उन दिनों ऐसे लोगों की तादाद काफी थी जो ना हिंदू ना मुसलमान की स्थिति में थे, जिनमें से कई अंततः सामूहिक रूप से मुसलमान हो गए। द्विवेदी जी ने इन बातों की चर्चा करके यह संकेत करना चाहा है कि इस्लाम के आने पर सांस्कृतिक संपर्क तथा टकराव के फलस्वरूप एक हद तक सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आया। निसंदेह सामाजिक ढांचा मूलतः सामंती ही रहा, किंतु ढांचे पर खड़ी इमारत की अधिरचना में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ। एक और जाति अवस्था में जगह जगह विश्रृंखलता के लक्षण दिखलाई पड़े तो दूसरी ओर उसे और ज्यादा कठोर बनाने के भी प्रयत्न हुए। भक्ति काव्य में जहाँ एक ओर इस विसंगतिपूर्ण स्थिति के समाधान का प्रयास है, वहीं इस स्थिति का चित्रण भी मिलता है। संभवतः यही वह चौथाई अंश है जिसके विशेषण की प्रक्रिया में द्विवेदी जी को इस्लाम के प्रभाव से अस्पृष्ट परंपरागत तीन चौथाई अंश का एहसास हुआ और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर मध्यकाल के भारतीय समाज का मुख्य अंतर विरोध नहीं है और न इसे हिंदी साहित्य की विकास की केंद्रीय शक्ति ही माना जा सकता है। फिर वह क्या है जिसकी प्रक्रिया इस्लाम के आने के पहले ही शुरू हो गई थी और उसके बाद भी अवाधित गति से चलती रही। भूमिका के प्रथम अध्याय भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास का उपसंहार करते हुए द्विवेदी जी इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं। भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में भारतीय इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम का प्रमुख विस्तार न भी घटी होती तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। पृष्ठ संख्या 15। इस उद्धरण में स्वभावता और स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग प्रभाव के विरुद्ध स्वभाव पर बल डालने के निमित्त प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि लोक की ओर शास्त्र का झुकना किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं बल्कि भारतीय समाज के स्वभाव के कारण ही है। स्वभावतः से इस प्रक्रिया के अनायास यह स्वतः स्फूर्त ढंग से संपन्न होने का भ्रम न होना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ ही पहले द्विवेदी जी कह आए हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी के पंडितों को लोक जीवन की ओर झुकने को बाध्य होना पड़ा था। दूसरे शब्दों में लोक शक्ति ने शास्त्र को झुकने के लिए बाध्य किया था। स्पष्ट यह है कि यह लोक शक्ति ही वह भीतर की शक्ति है जो भारतीय इतिहास को उस विकास की ओर ठेले लिए जा रही है। इस प्रकार मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यदि इस शास्त्र लोक द्वंद्व पर किसी मार्क्सवादी पंडित को इसीलिए ऐतराज हो कि यह वर्ग संघर्ष की वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, तो उसके पारितोष के लिए मार्च 1946 के द मॉडर्न क्वार्टरली जिल्द 1 संख्या 2 लंदन में प्रकाशित जॉन इरविन के लेख द क्लास स्ट्रगल इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का हवाला देना पर्याप्त है, जिसमें उस मार्क्सवादी इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में इसी शास्त्रीय ब्राह्मण धर्म और लोक साहित्य के संघर्ष को वर्ग संघर्ष के मूल रूप की तरह प्रतिपादित किया है। जॉन इरविन के अनुसार भारतीय इतिहास में ऐसे समय आते हैं जब आर्य लोग अपनी आत्मसात कर लेने की प्रवृत्ति को खो देते रहे हैं, और परिणाम यह होता है कि ब्राह्मणवादी निरंकुशता पहले से ही आर्थिक दृष्टि से दलित जनता पर निष्ठुरता पूर्वक लाद दी जाती थी। ऐसी परिस्थिति में जब संकट अनिवार्य था, दलित जन शक्तियां रूढ़िवाद के स्तर के नीचे वेग से संगठित होने लगती थी और एक खुले विद्रोह की भूमिका तैयार हो जाती थी। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास वस्तुतः ऐसा ही था, जिसने ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। भारतीय इतिहास की इस सामान्य प्रवृत्ति का उल्लेख करने के बाद लेखक ने मध्य युग के वैष्णव भक्ति आंदोलन के विशेष संदर्भ में लिखा है कि ये संप्रदाय ब्राह्मण धर्म की अनुदारता के विरुद्ध व्यापक जन विद्रोह के रूप में जनता द्वारा अपनाए गए हैं। ये आंदोलन रहस्यवादी प्रकृति के थे और व्यक्ति को जाति तथा रूढ़ियों की परवाह किए बिना अपने ढंग से पूर्णता प्राप्त करने का आह्वान करके ब्राह्मणों के पुरोहितवाद को सीधे चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार लोक संस्कृति वह मुख्य माध्यम बन गई जिसके द्वारा यह धार्मिक विद्रोह जनता में फैल गया, और कालक्रम से उन आंदोलनों के समान ही लोक संस्कृति उच्च वर्गीय आचार संहिता का की अवज्ञा का साधन बन गई। इसका परिधान हमेशा एक समृद्ध मानववाद रहा है, जिसमें जीवन की पूर्ण स्वीकृति और इंद्रिय उपभोग का भाव निहित था, और इस प्रकार यह भावना तपस्या और उपासना पर बल देने वाले कट्टर पंथ के सर्वथा विपरीत थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी जॉन इरविन से 6 वर्ष पहले ही हिंदी साहित्य की भूमिका में इस प्रकार की स्थापनाएं कर चुके थे। शास्त्र और लोक के बीच द्वंद्व की इस प्रक्रिया का आकलन करते हुए द्विवेदी जी ने भारतीय इतिहास की एक और विशेषता की ओर संकेत किया, वह यह है कि लोक के दबाव में शास्त्र ने कभी कभी अपने आप को लचीला बनाकर लोक की बहुत सी विशेषताओं को अंतर्भुक्त कर लिया। भारत में उच्च वर्ग के इस वैचारिक लचीलेपन और समझौतावादी रुख का ही यह परिणाम हुआ है कि हिंसात्मक विद्रोह की स्थितियां बहुत कम उत्पन्न हुई। इस दृष्टि से भारत की प्राचीन मनीषा अन्य अनेक देशों के बुद्धिजीवियों से अधिक चतुर और व्यवहार कुशल प्रतीत होती है, किंतु यदि एक ओर शास्त्र ने झुककर लोक की विशेषताओं को अंतर्भुक्त किया, तो दूसरी ओर शास्त्र वंचित लोक भी अपने अनुभव संचित विचार खंडों को सुसंगत और समृद्ध बनाने के लिए शास्त्र का सहारा लेता रहा है। इस दोहरी प्रक्रिया में कभी कभी एक ऐसे धर्म लोक धर्म का निर्माण हुआ है जो व्यापक जन विद्रोह के लिए वैचारिक आधार का काम करता रहता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत यह लोक धर्म की अवधारणा निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो लोक धर्म शब्द का प्रयोग द्विवेदी जी से पहले शुक्ल जी ने भी किया है, किंतु जैसा कि तुलसीदास नामक पुस्तक के लोक धर्म शीर्षक अध्याय से स्पष्ट है, शुक्ल जी का लोक धर्म बहुत कुछ वर्णाश्रम धर्म ही है। भक्ति के नाम पर वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले और आर्य धर्म के सामाजिक तत्व को न समझकर लोगों की वर्णाश्रम धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने वाले नीच जातियों के निर्गुण पंथी भक्तों की जैसी भर्त्सना शुक्ल जी ने की है, उससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी का लोक धर्म वस्तुतः आर्य शास्त्रानुमोदित सनातन धर्म ही है। इसके विपरीत भूमिका में जब द्विवेदी जी कहते हैं कि बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर लोक धर्म में घुल मिल रहा था, पृष्ठ संख्या 11, तो स्पष्ट है कि सामान्य जन में प्रचलित टोना टोटका तंत्र मंत्र मिथक आदि विश्वासों को ही वे लोक धर्म मानते हैं। इसी प्रकार सूर्यदास प्रेरणा स्त्रोत शीर्षक निबंध में वे फिर कहते हैं कि असल में सूर्य सागर शास्त्रीय वैष्णव भक्ति शास्त्र से प्रेरणा अवश्य लेता है, पर शास्त्रीय की अपेक्षा लोक धर्म के अधिक निकट है। ग्रंथावली 4 पृष्ठ संख्या 152। यहाँ तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि के अतिरिक्त लोक में प्रचलित शाक्त देवियों के उन अनेक रूपों को भी लोक धर्म में समेट लिया गया है जिनका प्रभाव सूर्य सागर में वर्णित गोपियों की बहुविधि लीलाओं के रूप में व्यक्त हुआ है। कृष्ण लीला में कदंब के फूल का प्रवेश एक ही ऐसे लोक प्रचलित मिथक विश्वास का उदाहरण है जो लोक धर्म का अंग है। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति साधना के स्त्रोत पर विचार करते हुए उन्होंने निर्जन धर्म पूजा आदि अनेक मिथकों और साधना पद्धतियों का जिक्र किया है जो या तो किसी आदिवासी समाज में प्रचलित थे अथवा नीचे समझी जाने वाली किसी जाति के अंदर उसकी आदिम प्रथा के रूप में अवशिष्ट रह गए। उल्लेखनीय है कि संस्कारवश द्विवेदी जी ने इस लोक धर्म के पहले कभी कभी निकृष्ट शब्द का भी प्रयोग किया है। जब वे यह कहते हैं कि बौद्ध धर्म उत्तरोत्तर लोक धर्म में घुल मिल रहा था, तो यह वाक्य बौद्ध धर्म के अपकर्ष का सूचक है, उत्कर्ष का नहीं। किंतु इस पूर्वा ग्रह में भी अधिक महत्वपूर्ण है लोक धर्म की शक्ति का स्वीकार। इस दिमागी खुलेपन का सबूत है भूमिका का यह कथन, मतो आचार्यों संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड के लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा मैं उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ, पृष्ठ संख्या 8। जन साधारण के जीवन में नाना विश्वासों के रूप में जीवित इस तथाकथित लोक धर्म का महत्व इस बात में है कि जनता के असंतोष को विद्रोह का रूप देने के लिए वैचारिक और भावनात्मक शक्ति की भूमिका यही अदा करता है। द्विवेदी जी के साहित्य में भक्ति आंदोलन की पूर्व पीठिका के रूप में लोक धर्म की विस्तृत चर्चा का कारण यही है कि वे लोक धर्म को ही भक्ति आंदोलन की जन्मभूमि मानते हैं। जब वे ये कहते हैं कि कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी, तो संकेत यही है कि योग के रूप में लोक धर्म क्षेत्र की भूमिका अदा करता है। इस प्रकार लोक धर्म जन साधारण जनों के विद्रोह की विचारधारा है। इसे लोक धर्म कहने का एक कारण तो यह है कि यह उच्च वर्गों के शास्त्र के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म तर्क पद्धति से संपन्न तथा व्यापक विश्व दृष्टि के रूप में विकसित कोई सुसंगत और सुव्यवस्थित विचार प्रणाली नहीं है। दूसरा कारण यह है कि यह पूंजीवादी समाज के बीच निर्मित किसी एक सुनिश्चित वर्ग चेतन वर्ग की विचार प्रणाली नहीं, बल्कि सामंती युग के असंगठित किसानों और दस्तकारों के विविध वर्गों उपवर्गों की मिली जुली भावनाओं का पुंज है। शास्त्र वंचित विविध दलित जातियों और जन समूह की मानसिक अभिव्यक्ति होने के कारण इस लोक धर्म का अव्यवस्थित और अनिश्चित होना अनिवार्य है, और इसलिए उच्च वर्गों के शास्त्र की तुलना में वह हीनतर भी प्रतीत हो सकता है, किंतु सिर्फ इसलिए वह महत्वहीन नहीं हो जाता। जैसा कि द्विवेदी जी ने भूमिका में संत मत के प्रसंग में कहा है, सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान तत्व ज्ञान के मार्ग में सब समय सहायक ही नहीं होता, और कभी कभी तो उस युग की तथोक्त नीच जातियों से आए हुए महापुरुषों का तर्क जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। इन संस्कारों से वंचित रहने के कारण ही वे सब जगह से सहज सत्य को सहज ही ले लेते हैं। वे रूढ़ियों और मिथ्या विश्वास के शिकार नहीं हुए, वे उस बेमतलब की निजत्व बुद्धि के भी शिकार नहीं हुए जो दूसरों की लिखी हुई बात को तोड़ मड़ोर कहने में, दूसरों से ग्रहण करने में महादोष से अपने को मुक्त समझती है। पृष्ठ संख्या 36। इस प्रकार परिस्थिति व शासक वर्ग की विचारधारा के प्रभाव से बहुत मुक्त रहने के कारण लोक धर्म शास्त्र से हीन प्रतीत होते हुए भी उसका विकल्प बनकर उपस्थित होता है, और यही उसकी शक्ति है। लोक धर्म का प्राण उसका विद्रोह है, इसलिए दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के रूप में खड़े होने वाले प्रत्येक जन आंदोलन की शक्ति और सीमा को समझने के लिए उसके द्वारा मान्य अनेक लोक धर्म का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए अंतोनियो ग्राम्सी ने जेल की लंबी सजा काटते हुए अपनी नोटबुक में इस समस्या पर गहरा विचार किया। जबकि उन दिनों अधिकांश मार्क्सवादी शासक वर्ग के वैचारिक प्रभुत्व का जवाब देने के लिए मजदूर वर्ग की विचार प्रणाली के विकास पर जोर दे रहे थे, ग्राम्सी ने किसानों और कारीगरों जैसे परंपरित वर्गों की वैचारिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। इस दृष्टि से उन्होंने बतलाया कि सामान्य जनों के प्रचलित विचार अपेक्षाकृत सरल और अल्प संगठित होते हैं, अक्सर वे परस्पर विरोधी और उलझे हुए भी होते हैं, और उनमें लोकवार्ताओं मिथकों और रोजमर्रा के लोक प्रचलित अनुभवों का पंचमेल होता है। फिर भी उन विचारों का बहुत महत्व है, क्योंकि व्यापक जन आंदोलन के लिए यही कारगर होते हैं। इस संदर्भ में ग्राम्सी ने यह कहने भी का साहस दिखलाया कि मार्क्स द्वारा निरूपित आइडियालॉजी की क्लासिकी अवधारणा इस जन आंदोलनों की लोकप्रिय विचारधारा को समझने में बहुत काम की साबित नहीं हो सकती। वस्तुतः किसी जन विद्रोह की लोकप्रिय विचारधारा का मूल्यांकन ऐतिहासिक दृष्टि से ही उचित है, तात्विक दृष्टि से नहीं। इस दृष्टि से देखने पर स्पष्ट है कि सिद्धों योगियों निर्गुण संतों और सगुण भक्तों के विचारों में पंडितों ने जो असंगतियां दिखाई हैं, वे सर्वथा अनुचित हैं। इस प्रक्रिया में पंडितों की झुंझलाहट कठिनाई बेबसी और भतर्षणा भली भांति समझ में आ जाती है। जब योगियों और भक्तों की विचारधारा परंपरागत वेदांत की विभिन्न दर्शन प्रणालियों में से किसी के चौखटे में पूरी तरह फिट नहीं आती, इसलिए आज भी पंडित मंडली इन प्रश्नों को लेकर असमंजस में पड़ी है कि कबीर का अपना दर्शन क्या था, कुछ था भी या नहीं, जायसी सूफी मत से कितने प्रभावित थे, और यदि थे तो किस सूफी संप्रदाय से। सूर्यदास के कुछ पद वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से क्यों बाहर पड़ते हैं, तुलसीदास अद्वैतवादी है या विशिष्टाद्वैतवादी, कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सारे प्रश्न तात्विक समीक्षा की दृष्टि से उत्पन्न हुए हैं, और इस दृष्टि में खतरा यह है कि अपने प्रिय संत या भक्त में तो श्रम करके किसी तरह संगति बैठा ली जाती है, लेकिन जो पसंद नहीं है वह अंततः भर्त्सना का शिकार होता है। शुक्ल जी ने इसी दृष्टि से कबीर के विचारों को खिचड़ी कहा है और तुलसी के अद्वैतवादी तथा विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में एक संगति ढूंढ ली। दूसरी ओर द्विवेदी जी ने कबीर के परस्पर विरोधी विचारों में भी एक संगति बैठाने का प्रयास किया। इस विवाद में कुछ मार्क्सवादी आलोचकों का रुख विशेष रूप से विचारणीय है, जिन्होंने शुक्ल जी का समर्थन करते हुए योगियों के साथ साथ कबीर के रहस्यवाद की आलोचना की और जायसी के रहस्यवाद में प्रशंसा के लिए अलौकिकता के अंदर लौकिकता के तत्व निकाल लिए। लेकिन जैसा कि ग्राम्सी ने कहा है, इस प्रश्न तथा कथित रहस्यवाद की तात्विक समीक्षा का उतना नहीं जितना ऐतिहासिक समीक्षा का है। रहस्यवाद तात्विक दृष्टि से लोक विरोधी और बुद्धि विरोधी होने के कारण एक गलत विचारधारा हो सकती है, किंतु जरूरी नहीं कि किसी निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ में भी उसकी वही लोक विरोधी भूमिका हो। यह तथ्य है कि मध्ययुगीन सामंती पुरोहिती उत्पीड़न के वातावरण में विभिन्न देशों के अनेक रहस्यवादी संतों के विरोध का झंडा बुलंद किया और इस तरह के अधिकांश विरोधी संत तत्वतः रहस्यवादी ही थे। इसलिए हिंदी के योगियों और संतों के रहस्यवाद का मूल्यांकन भी इसी ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन है। विचित्र विडंबना है कि निरंतर तात्विक चिंतन की चुनौती झेलते हुए भी द्विवेदी जी ने अपने समकालीन अनेक मार्क्सवादी आलोचकों की तुलना में योगियों और संतों के रहस्यवाद के मूल्यांकन में अधिक ऐतिहासिक दृष्टि का परिचय दिया। प्रसंगवश योगियों और संतों की जिस विचारधारा को प्रायः रहस्यवाद की संज्ञा दी गई, द्विवेदी जी ने प्रायः इस संदर्भ में उस शब्द की इस्तेमाल से परहेज किया। अपनी लोक धर्म की अवधारणा के अनुसार उन्होंने योगियों और संतों की सहज साधना में किसी प्रकार की रहस्य साधना के स्थान पर एक अनुसम्मत विवेकपूर्ण जीवन दृष्टि के लिए दर्शन किए। सहज साधना 1963 नामक पुस्तक में उन्होंने इस जीवन दृष्टि का विवेचन करते हुए पारख पद और अनेभे साचा जैसे शब्दों के आधार पर यह दिखलाने की कोशिश की है कि संतों का बल अनुभव सत्य और अनभय सत्य पर था। इसलिए वे कागज की लेखी न कहकर अखिन देखी कहने के विश्वासी थे। इसलिए इस कारण वे अपने ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते थे, जो एक तरह से स्थूल वेद के विरुद्ध सूक्ष्म वेद था, किंतु मूलतः स्वसंवेद ज्ञान था। इस अनुभववादी ज्ञान मीमांसा की परिणति अंततः पारख पद में होती थी, जिसका अर्थ है अनुभव से प्राप्त ज्ञान की बुद्धि द्वारा परीक्षा। यदि यह व्याख्या सही है तो रहस्यवादी कहे जाने वाले संत वस्तुतः अनुभववादी और विवेकवादी ठहरते हैं। उन्हें ज्ञानी कहने का कारण भी संभवतः यही है। इसी अनुभववाद और विवेकवाद के अस्त्र से उन्होंने जाति पाति छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव पर चोट की थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह अनुभव सम्मत विवेकवाद लोक धर्म का सहज स्वभाव है। लोक धर्म की प्रकृति की सही पहचान के कारण ही द्विवेदी जी को यह घोषित करने में कोई हिचक नहीं हुई कि भक्ति आंदोलन विराट जन आंदोलन था। भूमिका पृष्ठ संख्या 57। इसलिए वे हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति आंदोलन से मानते हैं, न कि औरों की तरह तथा कथित वीर गाथाओं से। इस तरह वे विद्यापति की समस्या का भी समाधान ढूंढ लेते हैं, जिन्हें आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल के फुटकल खाते में डाल रखा था। विद्यापति असंदिग्ध रूप से आधुनिक भाषाओं में लिरिक के पहले महान कवि थे। अब यदि ऐसा कवि साहित्यिक इतिहास के अंतर्गत एक काल के फुटकल खाते में स्थान पाए तो क्या उस काल विभाजन का समूचा सिद्धांत ही संदिग्ध नहीं हो जाता? द्विवेदी जी की दृष्टि में विद्यापति संक्रमण काल के ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनका एक पांव अपनी अवहट्ट कीर्ति लता के कारण आदिकाल में है, तो दूसरा देसी भाषा में लिखित राधा कृष्ण लीला के सरस पदों की पदावली के कारण भक्ति काव्य में। इस प्रकार द्विवेदी जी की इतिहास योजना में विद्यापति हिंदी साहित्य की प्राणधारा के मुख्य प्रवाह है। किंतु साहित्य की प्राणधारा के साथ एक समस्या यह उठती है कि प्राणधारा के अंतर्गत अनेक अंतरधाराएं होती हैं, जिनमें परस्पर सहभाव के साथ कभी कभी टकराव की भी संभावना होती है। सवाल इन अंतरधाराओं के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण और सापेक्षिक मूल्यांकन का है। उदाहरण के लिए द्विवेदी जी ने जहां भूमिका के अंतर्गत मध्ययुग के संतों का सामान्य विश्वास निरूपित करके भक्ति आंदोलन के समान तत्वों पर बल दिया, वहीं अगले अध्याय में भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व भी अलग अलग निरूपित किया गया। यद्यपि व्यक्तित्व निरूपण में प्रायः सभी कवियों के विधेयात्मक पक्षों का ही उल्लेख है, फिर भी तारतमिक दृष्टि से देखने पर यह बात छिपी नहीं रहती कि द्विवेदी जी की दृष्टि में निर्गुण भक्ति के कवियों के सामाजिक विचार अधिक प्रगतिशील थे। यह मत स्पष्टतः आचार्य शुक्ल की स्थापनाओं के विरुद्ध है, जिनके अनुसार निर्गुण भक्ति लोक विरोधी थे और सगुण भक्त लोक संग्रही, और उनमें भी सूरदास में केवल लोक रंजक का पक्ष ही आ सका। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी के समर्थन बड़े से बड़े प्रगतिशील आलोचकों के लिए भी शुक्ल जी की इन स्थापनाओं से पूरी तरह सहमत होना कठिन है। ऐसी हालत में इधर अक्सर कहा जाने लगा है कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अंतर विरोधियों का प्रश्न न उठाकर समान तत्वों पर बल देना ही उचित है। इसी तरह देखा जाए तो छायावाद के कवियों में भी जितनी समानताएं हैं उतनी असमानताएं नहीं, और कुछ लोगों की दृष्टि में अज्ञेय मुक्ति बोधावली सम्मिलित नई कविता के आंदोलन की भी स्थिति बहुत कुछ समान ही होगी। फिर भी यह तथ्य है कि छायावाद तथा नई कविता में निहित अंतर विरोधियों का उल्लेख किया जाता है, फिर भक्ति आंदोलन के अंतर विरोधियों पर ही पर्दा क्यों डाला जाए? इस प्रसंग में मई 1955 की नई दिशा में प्रकाशित गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध की मुख्य स्थापना यह है कि निचली जातियों के बीच से पैदा होने वाले संतों के द्वारा निर्गुण भक्ति के रूप में भक्ति आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, किंतु आगे चलकर ऊंची जाति वालों ने इसकी शक्ति को पहचान कर इसे अपनाया और क्रमशः उसे अपने विचारों के अनुरूप ढालकर कृष्ण और राम की सगुण भक्ति का रूप दे डाला, जिससे उसके क्रांतिकारी दांत उखड़ लिए गए। इस प्रकार प्रक्रिया में कृष्ण भक्ति में तो कुछ क्रांतिकारी तत्व बचे रह गए, लेकिन राम भक्ति में जाकर तो रहे सहे तत्व भी गायब हो गए। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने ये प्रश्न उठाए हैं, क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कवि निम्न जातीय शूद्र वर्गों से नहीं आया? क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रसखान और रहीम जैसे हृदयवान मुसलमान कवि बराबर रह आए, किंतु राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी मुसलमान और एक भी शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा विशद नहीं कर सका? क्या कारण है कि तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रधान हिंदी क्षेत्र में अंतिम कवि थे? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध पृष्ठ संख्या 90 से 91। इन प्रश्नों के उत्तर इसी धारणा की ओर ले जाते हैं कि इन सब के लिए भक्ति आंदोलन पर उच्च वंशीय उच्च जातीय वर्गों का प्रभुत्व जिम्मेदार है और अंततः भक्ति आंदोलन की स्थिति शिथिलता तथा समाप्ति के लिए भी वही दोषी है। इस विवेचन से भक्ति काल के बाद रीति काव्य के उदय का भी कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि आरंभ के शास्त्र निरपेक्ष निर्गुण काव्य की शास्त्र सापेक्ष सगुण परिणति की ओर ध्यान दे तो शास्त्रीयतावाद के पुनरुत्थान के रूप में रीति काव्य के प्रसार की भी संगति लग जाती है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी द्वारा बार बार दोहराया जाने वाला यह फिकरा विचारणीय हो जाता है कि एक बार शास्त्र का सहारा पाकर यह मत इस सिरे से उस सिरे तक फैल गया। यह बात उन्होंने कबीर के संदर्भ में भी कही है और सूर के संदर्भ में भी। यही नहीं बल्कि रीति काव्य के संदर्भ में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका में लिखा है कि इस विशेष काल में जब शास्त्र चिंता लोक चिंता का रूप धारण करने लगी थी वह पुरानी लोक काव्य धारा शास्त्रीय मत के साथ मिलकर देखते देखते विशाल रूप ग्रहण कर गई। पृष्ठ संख्या 125। यदि शास्त्र की सहायता को प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी मान लिए जाए तो इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि शास्त्र का प्रभाव लोक धर्म के लिए घातक नहीं है। निर्गुण संतों की चर्चा के प्रसंग में द्विवेदी जी जिस प्रकार उनका शास्त्र वंचित होना शुभ समझते हैं उससे स्पष्ट है कि वे शास्त्रों के घातक प्रभाव से भली भांति परिचित हैं। फिर भी यदि अन्य प्रसंगों में उस बात को भूल जाते हैं तो इसे प्राणधारा के वेग का ही फल कहा जाएगा। शायद यही वजह है कि जितने विश्वसनीय ढंग से वे हिंदी साहित्य की प्राणधारा का दिग्दर्शन कराते हैं अंतरधाराओं के अंतर विरोध का निरूपण भी उतनी ही स्पष्टता से करते प्रतीत नहीं होते। शायद इसका एक कारण यह हो कि कम से कम भक्ति आंदोलन में उत्तरोत्तर शास्त्र का सहारा लेने वाली कीर्तियां साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठतर होती गई। यह भी एक विरोधाभास है कि शास्त्र संबलित होकर साहित्य जिस मात्रा में सामाजिक दृष्टि से लोक विमुख तथा लोक विरोधी विचारों की ओर विचलित होता गया काव्य भाषा तथा काव्य कला की दृष्टि से उसी मात्रा में समृद्धतर होता गया। कबीर से चलकर क्रमशः जायसी सूर और तुलसी तक के विकास का मूल्यांकन इस दृष्टि से रोचक हो सकता है किंतु इस प्रश्न न तो मुक्ति बोध ने उठाया है और न द्विवेदी जी ने ही। इसलिए महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रस्तुत प्रसंग में इसकी चर्चा अप्रासंगिक होगी।